हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में बहुत सुंदर लीलाओं का वर्णन आता है और इनमें से एक सुंदर शिक्षा, उपदेश और एक लीला ये है उद्धव गीता का। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था और जिसको भगवत गीता के नाम से हम जानते हैं, ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र और भक्त उद्धव को ये उद्धव गीता सुनाई थी। प्रसंग ऐसा है कि जब युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर विराजमान हुए थे और पुनः पृथ्वी का राज संभाल रहे थे और द्वारका में उधर यदुकुल अपने तरह से खुश थे, शक्तिशाली थे, तो देवी देवतागण अपने लोकों में सोच रहे थे कि अब समय आ गया है कि श्री कृष्ण को अपने धाम में लौटकर चले जाना चाहिए, क्योंकि उनकी लीला समाप्त हो चुकी है। तो सारे देवी देवतागण भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने अपने देवलोक से द्वारकापुरी में चले आए और देवलोक के सुंदर सुगंधित पुष्पहार लेकर आए, नाना प्रकार के उपहार भेंट साथ में लेकर आए और बड़े प्रसन्न चित्त से भगवान का दर्शन किया और भगवान श्री कृष्ण के प्रति सुंदर स्तुतियां और प्रार्थनाएं भी अर्पित किए। फिर ब्रह्मा जी जो कि देवताओं के प्रमुख हैं, वो अपने आप को हवा में, आकाश में स्थित होकर वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। अभी आप जानते हैं कि देवी देवतागण जब पृथ्वी लोक पर आते हैं तो जमीन पर खड़े नहीं होते हैं जैसे हम खड़े होते हैं, वो हवा में खड़े होते हैं, 6 इंच ऊपर खड़ा होते हैं। इस तरह से फर्क पता चल जाता है कि देवता कौन है और मनुष्य कौन है। आजकल तो खैर देवी देवता अदृश्य रहते हैं, अपने आप को हमारे आंखों के सामने प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन सत्य, द्वापर और त्रेता युगों में देवी देवता अक्सर पृथ्वी लोक पर आया जाया करते थे और उनका मिलना जुलना पृथ्वी लोक के निवासियों से होता रहता था। तो इस तरह से जब किसी पृथ्वीवासी को पता करना होता था कि इतने तेजस्वी व्यक्ति हैं, देवता हैं या इस मनुष्य हैं, तो उनके चरणों की ओर देखता था, क्योंकि देवता गण जो है वो ऊपर के लोक के हैं, तो यहाँ पर वो साधारण मनुष्य की तरह चलना नहीं चाहते थे। जैसे कोई बड़ा आदमी आता है तो वो दूसरे आदमी साधारण आदमी की तरह चलकर नहीं आएगा, वो मर्सिडीज गाड़ी वगैरह लेकर आएगा। तो उसी तरह से देवी देवतागण जब आते हैं और खड़े होते हैं तो हवा में खड़े हो जाते हैं। तो खैर जिस भावना से ब्रह्मा जी खड़े हुए वो कोई घमंड की भावना से न था, लेकिन केवल ताकि सभी लोग देख पाए उनको, भगवान श्री कृष्ण उनको अच्छी तरह से देख पाए। और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, हम सब आपके पास आए थे ये प्रार्थना लेकर कि पृथ्वी का भार बहुत बढ़ गया है, पापी लोगों का बोझ बढ़ गया है, पापियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, इसलिए इस बोझ को कृपा करके कम करें और कम करने के लिए आपको अवतार लेना होगा। तो भगवान ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और प्रकट हुए वृंदावन में, फिर बाद में मथुरा में लीला की और अंततः द्वारका में चले आए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि आपने तो पृथ्वी का भार, पापियों की संख्या तो कम कर दी है, पृथ्वी का बोझ नष्ट कर दिया है, अभी माता पृथ्वी भू माता भू देवी अभी संतुष्ट हैं, अभी कोई कष्ट नहीं है भू देवी को, और आपने धर्म की संस्थापना भी कर दी है, आपने अच्छे अच्छे उपदेश दिए हैं, और पुण्यवान लोगों में अभी धर्म की स्थापना ऐसी हो गई है कि अभी शायद आपकी आवश्यकता यह नहीं है, और आपने स्वयं अपने सुंदर दिव्य लीलाओं के माध्यम से आपके ही कीर्ति और यश को सारे पृथ्वी लोक पर फैला दिया है। जिस कीर्ति और यश के गुणगान करने से, इसका वर्णन करने से सारा पृथ्वी सारा ब्रह्मांड पवित्र और शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए हम समझते हैं कि जिस हेतु आप यहाँ आए थे, जिस कार्य को संपन्न करने के लिए आप यहाँ आए थे, वो पूर्ण हो चुका है, इसलिए कृपा करके अभी आपके धाम में आप लौट कर चले जाएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ बात बिल्कुल सही है, मेरे कार्य तो संपन्न हो गए, दुष्टों का नाश कर दिया, धर्म की संस्थापना कर दी, यहाँ पृथ्वी लोक के निवासियों को मेरी ओर आकर्षित करने के लिए मेरे सुंदर सुंदर मधुर लीलाएं प्रदर्शित किए, और ये सब हो गया, और मेरे परिवार के लोग, मेरे यदुकुल के जो लोग हैं, वो भी अभी बहुत शक्तिशाली हो जा रहे हैं, इतने शक्तिशाली हो रहे हैं कि कोई शक्ति ऐसी ब्रह्मांड में नहीं है जो उनको रोक सकती है, और मैं ही एकमात्र शक्ति हूँ जिस तरह से सागर का तट सागर को रोक के रखता है और सागर को भूमि में आने नहीं देता, उसी तरह से मैं उपस्थित हूँ यहाँ, इसीलिए ये यदुकुल के लोग अभी तक अपने सीमा में हैं, नहीं तो इन्होंने क्या नहीं कर दिया होता सारे पृथ्वी लोक के ऊपर। तो खैर मेरे खुद के जाने के पहले मुझे इनको भी साथ में पहले भेज देना होगा, और फिर भेज कर फिर मैं चले जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर लीला की जिससे यदुकुल के सदस्य सब वापस चले गए, लेकिन ये लीला जो है ये कभी और सुनाएंगे, लेकिन इस संदर्भ में कहना उचित ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्मा जी से कि हाँ आप सब जो कह रहे हो वो ठीक है, इसलिए मैं अभी जाने की तैयारी करता हूँ, तो आप निश्चिंत होकर अपने धाम में आप चले जाइए। तो देवी देवतागण सब अपने अपने स्थान में लौटकर चले गए। उधर भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त उद्धव को संशय होने लगा कि अभी भगवान श्री कृष्ण शायद जाने वाले हैं, अपने धाम में लौटकर जाने वाले हैं, और मेरा क्या होगा, मैं किस तरह से मेरे प्रिय कृष्ण के बिना जी सकूंगा। तो ये संशय जब हुआ तो उद्धव ने श्री कृष्ण से मुलाकात की एक सुनसान जगह में जहाँ पे और कोई व्यक्ति नहीं था, और इस समय उद्धव ने कहा कि मुझे ये संशय हो रहा है कि आप बहुत ही जल्दी ये संसार से चले जाने वाले हैं, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं कैसे जीऊंगा यहाँ पर आपके बिना। तो श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, मेरे मन में यही विचार है कि मेरी लीला समाप्त करके मुझे वापस मेरे धाम में लौट कर जाना है। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया, जिस उपदेश को उद्धव गीता के नाम से हम जानते हैं। काफी लंबा उपदेश है, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कई अध्याय इस उपदेश के ही हैं। और इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को कई कहानियां भी सुनाई, और उनमें से एक कहानी थी एक संवाद का, जो कि महाराज यदु, जिनके वंश में ही श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, और एक अवधूत के बीच में। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसे विवेक बुद्धि का प्रयोग करके इस संसार का परीक्षण करना चाहिए, जिससे उसे पता चले कि वास्तव में यह संसार का स्वभाव क्या है, इसके लक्षण क्या है, और इस तरह से संसार से उसे विरक्ति होनी चाहिए और मेरे चरण कमलों के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। ऐसे विवेक बुद्धि की सहायता लेकर उसे मेरे चरणों का आश्रय लेना चाहिए। इस संदर्भ में एक कहानी बताते हैं संत महात्मा, और वो कहानी है महाराज यदु और एक अवधूत ब्राह्मण के वार्तालाप के संवाद के बारे में। इस तरह से श्री कृष्ण ने उद्धव को ये कहानी बताना आरंभ किया। एक बार महाराज यदु अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे, जैसे कि अक्सर राजा किया करते थे, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है देखना कि प्रजा संतुष्ट है या नहीं, राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। और इस तरह से महाराज यदु भ्रमण करते करते एक जगह आए, जहां उन्होंने एक अवधूत ब्राह्मण को देखा। अवधूत मतलब वो साधु जो समाज के नियमों को पालन नहीं करता है। अभी हमारे संस्था में जो साधु हैं, वो साधु कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से समाज के नीति रिवाज रीतियों के हिसाब से चलें, नहीं तो समाज में उत्पात हो सकता है। लेकिन जो अवधूत होते हैं उनके ऊपर कोई रीति रिवाज कोई नियम का बंधन नहीं पड़ता, वो बस यूं ही संसार में भ्रमण करते हैं, इधर उधर जाते हैं, और अपने ही अंदर आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करते हैं, इसलिए संसार के कोई नियम उन पर लागू नहीं होते। तो महाराज यदु उनके सामने आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपके दर्शन मात्र से ही हमें यह ज्ञात होता है कि आप तो बड़े विद्वान हैं, आप बड़े निपुण हैं, आप शास्त्रज्ञ हैं, आध्यात्म का जो मूल है वो आप समझ चुके हैं, इसका साक्षात्कार भी कर चुके हैं, आप नवयुवक हैं, सुंदर हैं, आपके अंदर सारे अच्छे गुण संपन्न हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे भ्रमण कर रहे हो, आप ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे एक कोई भूत इधर उधर भटकता है, या तो कोई जड़ या उन्मत्त भाव से कोई व्यक्ति व्यवहार कर रहा हो, तो आपका व्यवहार ऐसे बाहरी दृष्टि से प्रतीत हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि आपके भीतर एक बहुत ही गहरी शांति की अनुभूति कर रहे हैं आप। तो बताइए कि आपके इस साक्षात्कार और अनुभूति का रहस्य क्या है, आप कहां से आए हैं, आप किस चीज के ज्ञान को जो है किसकी अनुभूति कर रहे हैं। तो अवधूत ब्राह्मण प्रसन्न हुए, महाराज यदु के नम्र व्यवहार से उनका चित्त भी प्रसन्न हुआ। हालांकि महाराज यदु इतने बड़े राजा थे, सारे पृथ्वी के राजा थे, फिर भी जब वो ब्राह्मण ऐसे संत के पास में आए तो बिल्कुल नम्र होकर सामने आए, और महाराज यदु को उस अवधूत ब्राह्मण ने कहा कि मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ। मैंने कई गुरुओं से शिक्षा प्राप्त कर ली है और इन गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करके इस ज्ञान को मैंने हृदय के भीतर रखा हुआ है और इस ज्ञान का साक्षात्कार मेरे हृदय में है, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ हृदय से। और मेरे ऐसे 24 गुरु हैं, एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, 24 गुरु मेरे हैं। तो क्योंकि आप इनके बारे में सुनना चाहते हैं, मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि ये मेरे गुरु कौन हैं और इनसे मैंने क्या ज्ञान प्राप्त किया है। तो अवधूत ब्राह्मण कहने लगे, सबसे पहले मेरे गुरु हैं पृथ्वी माता, क्योंकि पृथ्वी माता से मैंने कई चीजें सीखी हैं। हम देखते हैं कि पृथ्वी माता के ऊपर कितने सारे लोग आक्रमण करते हैं। आजकल भी हम देखते हैं कि प्रगति के नाम पर पृथ्वी के भीतर गड्ढे खोदे जाते हैं जिससे तेल का उत्पादन होता है, या तो फिर धातुओं के को बाहर निकालने के लिए बड़े बड़े बम इत्यादि का विस्फोट कराते हैं लोग, जिससे बहुत कठिनाई होती है भू देवी को, पृथ्वी माता को। इन चीजों को उग्र कर्म कहते हैं। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण बताते हैं, एतान दृष्टिम अवष्टभ्य, वो कहते हैं कि ऐसी दृष्टि, कैसी दृष्टि, एक असुरी प्रवृत्ति की दृष्टि। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अल्प बुद्धि से प्रभवंत्य उग्र कर्माण क्षयाय जगतो हिता, इस तरह से जो उग्र कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं जिससे जगत का अहित होता है, ऐसे लोग भयंकर कार्य करते हैं। और प्रभुपाद जी समझाते हैं कि पृथ्वी माता के ऊपर जो आक्रमण किए जाते हैं इस तरह के, वो इस श्रेणी में आते हैं। तो हालांकि पृथ्वी माता के ऊपर इतना आक्रमण होता है, फिर भी पृथ्वी माता कोई शिकायत नहीं करती है, फिर भी अपना सब कुछ दे देती है और दूसरों के हित के लिए वो कार्य करती है। तो अवधूत ब्राह्मण कहने लगे कि मैंने पृथ्वी माता से सीखा है कि किस तरह से अगर हमारे प्रति कोई अत्याचार हो, कोई अन्याय हो, कोई हमारे ऊपर कोई आक्रमण करे, तो हमें कैसे इसको सहन करना चाहिए और जो आक्रमण करने वाला है, जो आतताई है, उसको दोषी नहीं ठहराना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि ये जो आतताई है ये तो भगवान का दूत है, ये तो केवल निमित्त है, वास्तव में इसका कसूर नहीं है। भगवान चाहते हैं, भगवान के इच्छा की पूर्ति के लिए ये एक यंत्र मात्र है, इसलिए मैं इसके प्रति कोई द्वेष या ईर्ष्या भावना नहीं रखूंगा मेरे हृदय में। और पृथ्वी माता अपने ऊपर बड़े बड़े विराट पर्वत भी धारण की हुई हैं और बड़े बड़े वृक्ष भी हैं, तो देखिए इन पर्वतों के और इन वृक्षों के क्या गुण होते हैं। जो पर्वत है, पर्वत से हम ये सीख सकते हैं कि किस तरह से दूसरों की भलाई के लिए हमें अपने आप को न्योछावर कर देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। पर्वत जो है सारे प्राणियों के लिए एक आश्रय का स्थान है, वहां पे नाना प्रकार के वृक्ष होते हैं, घास तृण होते हैं, और वहां से पर्वत से अलग अलग तरह के झरने वगैरह बहते हैं जिसे आगे चलकर फिर वो नदी बन जाते हैं। इस तरह से पर्वत मनुष्य जाति के लिए और सारे प्राणियों के लिए सब कुछ प्रदान करते हैं। और फिर वृक्ष, वृक्ष की तो बात ही क्या, वृक्ष अपने आप को अपना कुछ भी नहीं रोक के रखती, सब कुछ दूसरों के हित के लिए छोड़ देती है। लोग आके वृक्ष के शाखाओं को काट डालते हैं, वृक्ष के छांव में बैठते हैं, उसके धूप से राहत की अनुभूति करते हैं, वृक्ष से फल फूल पत्ते इत्यादि लेते हैं, और इतना सब होते हुए भी जब लोग वृक्ष को काटने आते हैं तो सहन करती है, शिकायत नहीं करती है। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि, कि हमें भी पृथ्वी माता पर्वत और वृक्ष की तरह सहनशील होना चाहिए और दूसरों के उद्धार के लिए, दूसरों के भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है वो कृपण कहलाता है, वो बहुत ही कंजूस कहलाता है। मनुष्य जीवन में सभ्यता ये है कि व्यक्ति अपने आप के लिए नहीं जिए बल्कि दूसरों के लिए जिए, और जो वास्तव में ज्ञानी पुरुष होता है वो जानता है कि दूसरों का हित उनके आध्यात्मिक जीवन के प्रगति में है, उनको भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लाने में है, इसलिए हमेशा वो प्रचार के कार्य में रहते हैं। प्रहलाद महाराज की यही भावना थी कि किस तरह से दूसरों का उद्धार किया जाए। जब नरसिंह देव ने उनसे कहा कि चलो लौट के आओ मेरे पास जल्दी से, तो प्रहलाद ने कहा नहीं, मैं इस भीषण भव सागर से मैं डरता नहीं हूँ, नहीं वो द्विजय पर दुरत्य वैतरण्या सद्वीर गायर महामृत मग्न चित्त शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। प्रहलाद कहने लगे कि मैं इस भीषण दावानल से डरता नहीं हूँ क्योंकि मैं सदैव आपके गुणगान में मेरे चित्त को मग्न रख लेता हूँ, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, मैं उन लोगों के लिए शोक कर रहा हूँ जो केवल माया सुखाय केवल ये अल्प सुख के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं और इसलिए झूठे झूठे जिम्मेदारियों को स्वीकार करके अपने जीवन को दुखी बना रहे हैं। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज बताते हैं कि किस तरह एक साधु को पर दुख दुखी होना चाहिए, दूसरों के दुख में दुख लेना चाहिए, उनकी भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। तो अवधूत ब्राह्मण ने कहा, ये मेरे पहले गुरु पृथ्वी माता, जिनमें पर्वत भी हैं, वृक्ष भी हैं इत्यादि, और वो कहने लगे दूसरे मेरे गुरु हैं हवा। हवा से भी हम कई चीजें सीख सकते हैं। वो बताने लगे कि हवा तो हर जगह घूमती फिरती है, बहती रहती है, लेकिन फिर भी कभी कभी हवा एक सुगंधित मधुर सुंदर एक बगीचे से बहती है, गुजरती है, और कभी कभी एक कचरे के डब्बे से ऊपर, कभी बहुत गंदे जगह से। तो ये जो गंध है, सुगंध है या दुर्गंध है, ये हवा सांस में ले आती है, और फिर वो सुगंध या दुर्गंध जब हम तक पहुंच जाता है तो हम कहते हैं कि हवा में बहुत दुर्गंध है, हवा में बहुत सुगंध है। लेकिन वास्तव में हवा ना तो सुगंधित है ना दुर्गंध, हवा केवल इस गंध को साथ में ले आती है। गंध तो किसी और चीज का लक्षण है, हवा का नहीं। ठीक उसी तरह से आत्मा जो है वो कभी इस शरीर में कभी उस शरीर में जाता है, इस वातावरण में उस वातावरण में जाता है, लेकिन चाहे किसी भी वातावरण में क्यों न हो, ये आत्मा जो है हमेशा इन भौतिक वातावरणों से परे रहता है, मुक्त रहता है। ये मैं हवा से सीख चुका हूँ। और मेरा तीसरा गुरु है आकाश। आकाश सारे हवा ब्रह्मांड सबको धारण किया हुआ है। गीता में भी भगवान बताते हैं, यथाकाश स्थितो नित्यम वायुः सर्वतको सर्वत्र को महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय। वो बताते हैं कि जिस तरह से आकाश में हवा स्थित है और सब कुछ स्थित है उसी तरह से मुझ में सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित हैं। तो आकाश जो है वो किसी भी चीज से दूषित नहीं होता, आकाश अपने स्थान में शुद्ध रहता है। उसी तरह से भगवान और आत्मा भी किसी चीज से दूषित नहीं होते, हमेशा अपने स्थान में शुद्ध रहते हैं, सच्चिदानंद रहते हैं। तो ये मैंने आकाश से सीख लिया है। आगे मेरे अगले गुरु रहे जल। जल से मैंने क्या सीखा है कि जल जो है इसके कई गुण होते हैं। जल शुद्ध होता है, जल स्निग्ध होता है, जल जब बहता है तो मधुर ध्वनि आती है। वैज्ञानिक भी बताते हैं कि जब हम किसी नदी के तट पर बैठते हैं तो जल के प्रवाह से, नदी के बहने से जो ध्वनि आती है अपने हमारे मन को शांत करती है। लेकिन यहाँ पर जब हम बैठते हैं, हम अलग अलग गाड़ियों की आवाज सुनते हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ झगड़ा कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, तो इन ऐसे ध्वनियों से, ऐसे आवाजों से मन शांत नहीं होता, बल्कि मन अधिक विचलित हो जाता है। लेकिन जल के प्रवाह से, जैसे वाटरफॉल है या कोई फाउंटेन होता है, जैसे बड़े राजा महाराजा भी अपने महलों में अवश्य कोई ऐसे फाउंटेन वगैरह रखते थे, ये एक ऐश्वर्य का लक्षण था, क्योंकि जल के प्रवाह से एक बहुत सुंदर रम्य वातावरण पैदा हो जाता है, जिससे मन भी शांत हो जाता है और आंखों के लिए भी एक बहुत सुंदर दृश्य होता है। और साथ साथ में जल के अंदर क्या है आप देख सकते हैं, क्योंकि जल स्वच्छ होता है। जल में अगर कोई पत्थर है, जल में कोई और कोई वस्तु है, मछली है, तो आप देख सकते हैं। तो उसी तरह से अवधूत ब्राह्मण कहने लगे कि ये जल के ऐसे गुण हैं, ये साधु में भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से जल शुद्ध होता है, शीतल होता है, उस तरह से साधु का हृदय भी शीतल होता है, शांत होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। और जिस तरह से जल के भीतर क्या है हम देख सकते हैं, उसी तरह से साधु के हृदय भी वो है, बिल्कुल साफ रहता है। ऐसा नहीं कि साधु कुछ बोले और करे और हृदय में कुछ तीसरी बात हो, जैसे कि संसार में देखते हैं। अक्सर संसार में हमें छल कपट कूटनीति करनी पड़ती है संसार में रहने के लिए भी, लेकिन साधु ऐसे नहीं होते, बहुत सरल होते हैं, मासूम होते हैं, जैसे एक बालक की तरह है। इसलिए उनके हृदय की जो बात होती है हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि ये क्या है। इस तरह से अवधूत ब्राह्मण कहने लगे कि हमें जल की तरह बनना चाहिए। देखिए, हम तो रोज जल पीते हैं, जल से स्नान करते हैं, जल को देखते हैं, हम रोज हवा के प्रभाव को, हम इसकी अनुभूति करते हैं, हम प्रकृति में इतने सारे चीजें देखते हैं, पृथ्वी को देखते हैं, वृक्षों को देखते हैं, लेकिन क्या हम ऐसे विचार करते हैं कभी? लेकिन देखिए अवधूत ब्राह्मण की दृष्टि कैसी थी, तो इधर उधर घूम रहे थे जैसे कि कोई पागल व्यक्ति घूम रहा हो। और स्वयं महाराज यदु ने कहा कि जैसे भूत भटकता है वैसे आप घूम रहे हो, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि आप ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं। तो अवधूत ब्राह्मण हमें सिखा रहे हैं कि हमें किस दृष्टि से भगवान की सृष्टि को देखना चाहिए। जब हम वृक्ष देखते हैं, केवल वृक्ष को नहीं देखना चाहिए, लेकिन जैसे अवधूत ब्राह्मण देख रहे हैं, समझना चाहिए कि ये वृक्ष तो मेरा गुरु है, इस वृक्ष से हम कितना सब कुछ सीख सकते हैं। अभी पंखा हवा चला रही है, ऐसा नहीं कि केवल पंखे के हवे से हम आराम करें और सो जाए, अभी आराम है, बहुत अच्छा, अच्छे वातावरण है निद्रा के लिए। तो इस तरह से हमें भी सीखना चाहिए। तो अवधूत ब्राह्मण ने अभी अपनी शिक्षा आगे बढ़ाई और कहने लगे कि मेरे अगले गुरु हैं अग्नि। वो कहने लगे कि अग्नि कभी कभी गुप्त रूप में जलती है और कभी कभी अग्नि ऐसे जलती है कि सभी को देखना पड़ता है। 10-12 फायर इंजन को, अग्निशमक जो है वाहनों को बुलाना पड़ता है। तो उसी तरह से कभी जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष होते हैं वो कभी कभी अपने वास्तव में जो उनके लक्षण है, उनके ज्ञान है, उनकी भक्ति है, उसको प्रकट करते हैं और कभी कभी नहीं करते हैं, कभी कभी उसको छुपा के रखते हैं। जिस तरह से जड़ भरत ने अपने असली गुण को छुपा के रखा था, आप जानते हैं कि जड़ भरत वास्तव में आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे, लेकिन वो चाहते थे कि संसार के बंधन में मैं फंसू नहीं। अगर मैं अपने आप को एक मूर्ख की तरह प्रकट कराऊंगा संसार के सामने तो लोग मेरा संग करना चाहेंगे नहीं। लोग अक्सर ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहते हैं जो बहुत बुद्धिमान है, जो बहुत आकर्षक है, जिसके बहुत अच्छे गुण होते हैं, बहुत सुंदर है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत मूर्ख है, उसकी बुद्धि नहीं है, कुरूप है, कोई अच्छे गुण नहीं है, तो कोई उसका संग नहीं करना चाहेगा। तो जड़ भरत ने सोचा कि मैं भी ऐसे ही अपने आप को पेश कराऊंगा लोगों के सामने, इसलिए उनका नाम हुआ जड़ भरत। एक जड़ वस्तु के समान मैं रहूंगा ताकि कोई मेरे असली स्वरूप को पहचान नहीं पाएगा, और मैं संसार से दूर रहूंगा। और दूर रहने से क्या फायदा होगा कि माया के जाल में मैं फंसूंगा नहीं, संसारी चक्करों में मैं फंसूंगा नहीं, किसी से आसक्ति नहीं होगी, किसी से दुश्मनी नहीं होगी, किसी के झगड़े में नहीं फंसूंगा, किसी के और किसी के सहायता का भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं निरासक्त होकर दूर रहूंगा संसार से, जितने लोग मेरे से दूर रहेंगे उतना मेरे लिए अच्छा है। तो इस तरह से कई साल बीत गए, और जब वो जवान थे, हट्टे खट्टा शरीर के थे वो, तो एक समय वहां महाराज रघुगुण वहां से गुजर रहे थे, पालकी में बैठे हुए। पालकी को जो धारण किए हुए चार लोग थे उनमें से एक बीमार हो गया और वो पालकी को उठा नहीं पाया, इसलिए राजा के दास या सेवक हैं वो ढूंढ रहे थे किसी योग्य व्यक्ति को जो हट्टा खट्टा हो, जो कि इस पालकी को उठा सके उनके साथ में। तो इधर उधर घूमते घूमते उन्होंने जड़ भरत को देखा, सोचा कि हाँ ये बड़ा अच्छा लगता है, योग्य लगता है इस कार्य के लिए, तो जड़ भरत को उठाकर ले आए। अब जड़ भरत तो आखिर जड़ भरत के कर्नाटक कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, जहां भी ये भी भगवान के दूत हैं, चलो जहां ले जाए हम भी वहां चले, कहीं ना नहीं कहते थे, कुछ इनकार नहीं करते थे, जो भी उनके रिश्तेदारों को खिलाते थे, जला हुआ भोजन खिलाते थे, सड़ा हुआ बासी कुछ खिला लेते थे, वो खा लेते थे, अगर मिला तो खाया, नहीं मिला तो नहीं खाया। तो इस तरह से जड़ भरत ने जब सुना कि ये बुला रहे हैं राजा की सेवा के लिए, चलो करते हैं राजा की सेवा, तो निकल पड़े और पालकी को अपने कंधों पर रखे हुए जैसे तीन दूसरे और लोग कर रहे थे चल पड़े। चलते चलते जड़ भरत ने देखा कि सामने कुछ चींटियां हैं। जैसे ही उन्होंने चींटियों को देखा तुरंत ब्रेक लगा दिया, जैसे रुक गए जड़ भरत वो अकेले रुक गए, बाकी तीन तो चल रहे थे। अब अपने मन में कल्पना कीजिए, चार लोग पालकी अपने कंधों पर धारण किए हुए चल रहे हैं और काफी तेज गति से चल रहे हैं, इन चार व्यक्तियों में से एक ने अगर अचानक ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा? तो महाराज रघुगुण प्राय पालकी से उलटकर गिर गए, बस बाल बाल बच गए। तो महाराज रघुगुण ने अपने सेवकों को डांटा, अरे मूर्ख लोगों क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, महाराज जी ये हमारी गलती नहीं है, ये तो ये नया आदमी है, इसने ऐसा किया है, अचानक रुक गया ये तो। तो महाराज ने कहा, देखो अभी ऐसा नहीं करो, अभी ऐसी गलती मत करो, चलो आगे। तो फिर और आगे चलते गए, दोबारा वही हुआ और महाराज रघुगुण गिरते गिरते बच गए। दोबारा उनको डांटा, दोबारा उन्होंने कहा ये तो हमारी गलती नहीं है, ये तो इसने किया है, ये इस व्यक्ति ने किया। उस समय महाराज रघुगुण ने बहुत डांटा रघुगुण को, जड़ भरत को, और कहने लगे, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ और मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ? तुम इतने मूर्ख हो कि समझते नहीं कि राजा की पालकी को कैसे उठा ले जाना चाहिए। तुम ऐसे चल रहे हो जैसे अपने ही दुनिया में चले जा रहे हो, सोचना तुम कि मैं कौन हूँ और कौन बैठा है इस पालकी में, नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा। तो इतने सालों तक
इन जड़ भरत ने अपना मुंह नहीं खोला था, कुछ नहीं बोला था, किसी से कुछ नहीं बोला था, किसी से कोई शिकायत नहीं की थी, किसी भी व्यक्ति ने उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार किया तो वो स्वीकार कर लेते, किसी भी प्रकार का अन्याय अत्याचार भी उनके साथ में होता तो वो सहन कर लेते थे, एक शब्द नहीं बोलते थे। लेकिन भगवान ने उनको अंदर ही अंदर से प्रेरणा दी कि आज अपना मुख खोलो। तो उन्होंने मुख खोला, तो ऐसे खोला, ऐसे खोल दिया कि महाराज रहुगुण देखते रह गए और सुनते रह गए। तो उन्होंने प्रवचन चालू कर दिया अपना, और जब प्रवचन चालू किया तो कहने लगे कि अरे राजन, आप समझते हो कि आप राजा हो और मैं आपका दास हूं, लेकिन ये हो सकता है कि पिछले जन्म में मैं राजा था और आप मेरे दास थे, ये भी हो सकता है कि आने वाले जन्म में भी मैं राजा बनूं और आप मेरे दास बनो। कौन राजा है और कौन दास है? ये संसार में ये सब पद हैं, ये क्षणिक चीजें हैं। इसमें जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है अपने आप को जानता है, पहचान लेता है, खुद का परिचय अपने आप से करा लेता है और जानता है कि मुझे ये संसार से कुछ लेना देना नहीं है। इस तरह से जड़ भरत ने अपना प्रवचन आरंभ किया, बोलते गए बोलते गए। महाराज रहुगुण को पता चला कि मैं क्या बोल रहा था, ये व्यक्ति कौन है, तो तुरंत उन्होंने दंडवत प्रणाम किया जड़ भरत को और कहा कि मैं कृपा याचना करता हूँ, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने पहचाना नहीं आपको, इसलिए मुझे उपदेश दीजिए, शिक्षा दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए इस भव सागर से। और इस तरह से जड़ भरत ने फिर उपदेश दिया। तो इस तरह से जीवन भर जड़ भरत ने अपने असली गुण को, अपने लक्षणों को, अपने ज्ञान को, भक्ति को छुपा के रखा। जिस तरह से कि एक अग्नि कभी कभी गुप्त रूप में जलती है, लेकिन जब भी आवश्यकता होती है तो अग्नि प्रज्वलित रूप में भी प्रकट हो जाती है। तो इस तरह से एक अवधूत ब्राह्मण कहने लगे कि मैंने अग्नि से ये सीखा है कि हमें भी ऐसे बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपना डिंडोरा पीटते रहे कि देखो मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं रोज 16 माला जाप करता हूँ, हम इतने नियमों का पालन करते हैं, इससे भी हमें घमंड हो सकता है। तो अवधूत ब्राह्मण कहने लगे कि कभी किसी अयोग्य व्यक्ति की प्रशंसा होती है तो उसका सर फूल जाता है, उसको घमंड हो जाता है और उस प्रशंसा को विश्वास में विश्वास करता है, सोचता है हाँ ये सही है। लेकिन जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष होता है वो अग्नि की तरह होता है। क्यों? क्योंकि जो भी प्रशंसा की जाती है उसकी, वो अग्नि में भस्म हो जाती है, उस प्रशंसा से उसका सर फूल नहीं जाता, नष्ट हो जाता है वो प्रशंसा। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा है उसका फायदा होता है। तो इस तरह से हमें भी अग्नि की तरह बनना चाहिए। और आगे चल के अवधूत ब्राह्मण ने कहा, मैंने चंद्रमा से भी बहुत कुछ सीखा है, ये भी मेरे एक गुरु हैं। चंद्रमा से हमने क्या सीखा है कि कभी आप जानते हैं कि पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक, अमावस्या से लेकर फिर पूर्णिमा तक चांद के अलग अलग पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में अंधकार बढ़ता जाता है पूर्णिमा अमावस्या की ओर, और अमावस्या से फिर शुरू होता है शुक्ल पक्ष और फिर आखिर पूर्णिमा होता है। लेकिन ये पक्ष तो केवल पक्ष है, क्या वास्तव में चांद का परिवर्तन होता है? नहीं, केवल ऐसे प्रतीत होता है। ठीक उसी तरह से आत्मा भी अलग अलग योनियों में जाती है, अलग अलग शरीर धारण करती है, कभी इस योनि में कभी उस योनि में। लेकिन हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए कि वास्तव में आत्मा बदल रही है, नहीं, आत्मा जैसे है वैसे ही है। बाहरी दृष्टि से प्रतीत होता है कि अलग अलग गुण हैं, अलग अलग योनियों में जाके, कभी एक पशु की योनि में, अगर कुत्ते की योनि में है तो पशु भौंकता है, मनुष्य की योनि में है तो मधुर वाणी बोलता है, लेकिन आत्मा तो वही है। जिस तरह से चाहे पूर्णिमा का चांद हो, अमावस्या का चांद हो, चांद तो चांद है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से लगता है कि ये अमावस्या है, ये पूर्णिमा है इत्यादि। तो इसी तरह से आत्मा तो आत्मा है, केवल बाहरी दृष्टि से हमें लगता है कि आत्मा भी, आत्मा ने ये गुण स्वीकार किए हैं या आत्मा ने वो गुण स्वीकार किए हैं। आगे अवधूत ब्राह्मण कहने लगे, मेरे गुरु केवल चांद ही नहीं सूरज भी है। कैसे? सूरज से मैंने क्या सीखा है? जिस तरह से सूरज उष्णता देती है, गर्मी देती है, और इस गर्मी से जो सागर का जल है वो बाफ के रूप में ऊपर चले आता है, फिर बादल बन जाते हैं, और सूरज की सहायता से फिर बादल जो है वो बरसात बरसने लगती है, और फिर जो जिस पानी को सूरज ने खींच लिया है बाफ के रूप में, उसी पानी को सूरज लौटा देती है। ऐसा नहीं कि पानी को खींच लिया और अपने पास में रख लिया, नहीं, फिर से लौटा देता है सूरज। ठीक उसी तरह से अवधूत ब्राह्मण कहने लगे कि हम परिश्रम करते हैं संसार में, और परिश्रम करके हम बहुत धन एकत्र करते हैं, तो धन को क्या करना चाहिए? अपने गद्दी के नीचे छुपाए रखा, थोड़े गोदरेज की अलमारी में रखा, थोड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगा दिया, थोड़े में शेयर खरीद दिया, सब अपने पास में रख दिया, संरक्षण कर दिया कि मेरा है, मैंने अपने परिश्रम से कमाया है इसलिए मेरे पास में रखूंगा, नहीं। अवधूत ब्राह्मण कहते हैं हमें भी सूरज की तरह होना चाहिए, जो भी हमने संसार से एकत्र किया है, कहां से एकत्र किया? भगवान के संसार से तो किया, अपना तो नहीं था वो। भगवान की जो सृष्टि है, भगवान ने जो चीजें बनाई हैं, उन्हीं से तो हमने ये चीजें एकत्र किए, और फिर अगर इन चीजों को हम केवल अपने पास में रखें और कहें कि ये मेरा है, ये तो चोरी होगी। तो हमें भी सूरज की तरह उदार होना चाहिए। क्या करना चाहिए? जिस तरह से हम इन चीजों को एकत्र करते हैं, अपने पास में रखते हैं, फिर समाज के भलाई के लिए, भगवान की सेवा के लिए दान में दे देना चाहिए। श्री कृष्ण के संपत्ति है सब कुछ, अपने मेहनत से अपने आवश्यकता है, इसलिए हम परिश्रम करते हैं, तो इसलिए इसे दान में, कृष्ण की सेवा में दे देना चाहिए। इस तरह से हमें सूरज की तरह बनना चाहिए। आगे अवधूत ब्राह्मण कहने लगे कि मेरे और एक गुरु हैं कबूतर। भला कबूतर गुटर गु करते रहते हैं और हमें हैरान करते हैं, खिड़की पे आकर बैठते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि ये गुटरगू करने वाले कबूतर हमारे गुरु कैसे हो सकते हैं, हम इनसे क्या सीख सकते हैं। लेकिन जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं, तेज दृष्टि से देखते हैं, हर एक चीज से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। तो कबूतर की पत्नी थी, तो दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अपना छोटा सा घर था, एक वृक्ष के डाले के ऊपर अपना छोटा सा तिनकों से पत्तों से घर बनाया हुआ था। कभी कभी बीच में जाते थे, थोड़ा कुछ खाना ले आते थे, नाश्ता ब्रेकफास्ट, कभी लंच डिनर सब कर लेते थे, अच्छा खासा जीते थे, खुश थे अपने जीवन, अपने छोटा सा संसार था, अपना घर था, किराए का नहीं था, मीरा रोड में, वो भी कृष्टि कॉम्प्लेक्स में उसके अलावा। और फिर धीरे धीरे से कबूतर की पत्नी ने अंडे दिए, अंडे में से छोटे छोटे कबूतर बाहर निकले चूं 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 करते हुए, और दोनों कबूतरों के हृदय जो है वो वात्सल्य भाव से उभर आया। दोनों इन छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्रेम करते थे, सोचते थे कि इनका, उनको देखते थे हर क्षण, उनके नेत्र जो है केवल उन बच्चों के ऊपर थे, कैसे भी उड़ना सीख रहे हैं, कैसे पंख भी बन रहे हैं, कैसे आपस में प्रेम चूं 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 कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। और फिर उनके लिए भोजन एकत्र करने के लिए इधर उधर वन में घूमते थे, और फिर थोड़ा थोड़ा भोजन उनके लिए ले आते थे, उनको खिलाते थे, पिलाते थे, और इस कार्य में बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति करते थे। सोचते थे कि यही जीवन है, कितना सुखी हमारा जीवन है, कितना अच्छा सब कुछ चल रहा है। एक दिन ऐसे हुआ कि दोनों कबूतर और कबूतर की पत्नी बाहर चले गए अपने बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए, और जब वो गए तो वहां एक शिकारी आया। शिकारी ने देखा कि ये कबूतर के जो बच्चे हैं ये चीं 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 कर रहे हैं यहाँ पर, चलो आसानी से पकड़ सकते हैं, तो अपना जाल फैला दिया शिकारी ने और सारे कबूतर को, बच्चों को पकड़ लिया। उधर कबूतर और कबूतर की पत्नी बहुत देर परिश्रम करके भोजन लाकर